Thank you. Araba ne kadar dönüyor? Mıknataha ne kadar mı? Nam iha i ve ha İmrat, शरत इत आशये जाते इद आशये शरद इद आशये इद का जल आशय का निधान शरदकालीन सरोवर में अच्छी तरह से विकसित पद्म के गर्भ में जो शोभा रहती है श्री रहती है उस शोभा को आपको नेत्र नेत्र ऐसे नेत्र से हमको देखा किस तरह से हमें आपने गर्भ किया हम आपकी अकेली प्रभाव शुल्क राशि का बिना वेतन के हम आपकी सेवी के हैं वही वचन में कह रहे हैं सारी देख रहे हैं बिना वेतन के आपकी सेवी के हैं क्योंकि थोड़ा करके हम बदले भी कुछ चाहते नहीं अशुल्क राशि अपने हमको वेतन दे करके शुल्क दे करके खरीदा नहीं है और मैं तो आपने हमारे साथ विवाह नहीं किया दया की पात्र है हम बिना वेतन के आपकी सेवा करते हैं लेकिन कृपक लोग में हमारे साथ कोई वैवाहिक संबंध भी रख सकते हैं हम बिना शुल्क के आपकी बात नहीं मतलब पूर्ण रूप से उसके चरण में हमने किया वेतन का वास्तविक अर्थ है सत्ता है दासी का ऐसी दासियों को अपने अपने नेत्र से मारा है या यह गर्भ नहीं है यह नहीं गर्भ है और नेत्र से गर्भ करना गर्भ नहीं है या अशस्त्र से ही गर्भ करना गर्भ माना गया है गर्भ का अर्थ है बेटियों को किसी भी दीर्घ नहीं रहने देंगे परिवार में लोक धर्म के पालन में पारिवारिक क्रियाकलाप में धैर्य या विवेक न रहने देंगे यही है बेटी की भगवान की सुंदरता से इस तरह से गोपीजन प्रभावित हुई इस तरह से प्रभावित हुई उस सुंदरता के आगे मन के रूप के आगे किसी वस्तु के नहीं किसी एक आजादी की सिद्धि नहीं रहती किसी को कह रहे हैं कि आप नहीं रहना और किसी के यज्ञ नहीं रहे किसी काम के यज्ञ नहीं रह गए ताकि नेत्र से हमारे गर्भ किए हमने जो लोक लज्जा छोड़ा देव धर्म छोड़ा पति की सेवा छोड़ा सजनी की सेवा छोड़ा हमने ज्ञान लेकर के नहीं छोड़ा आपकी नेत्र में हमें आपकी आंखों में ऐसी सुंदरता है आंखों की सुंदरता के उपलक्षण से श्री ज्योति गणि भगवान श्री कृष्ण के सर्वांग सौंदर्य का निरूपण करते हैं जो प्रयत्न अपने अपने नेत्र से ही भाव किया है नारा है ऐसे नेत्र ही जीत गए हैं सरज उदास है सरज कालीन स्वच्छ सरोवर में अच्छी तरह से अच्छी जाति का कमल और ये भी विकसित कर उसकी जाति बहुत अच्छी है हिंदू की, शरद काल का सरोवर है लेकिन खुना है स्वच्छ सरोवर है। कमल है सबसे सुंदर विकसित होता है सरोवर, सुंदर है स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर में उत्कृष्ट जाति कमल और यही फूल विकसित है। विकसित कमल के फूल को खींचा उदर उदर में जो शोभा होती है उस शोभा को आपके मित्र नाम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी शोभा को खींच निकल आपकी मुखा लिया और अपने पास में शोभा हरने का अर्थ यह है श्रीकृष्ण का मित्र इतनी सुंदर है इतनी सुंदर है कि उसके आगे कमल के गमझ में जो स्त्री है शोभा है उसकी कोई गिनती नहीं है, जो कोई हाथ पर नहीं है। वैसे जो दीपक जल रहा है रात्रि में बहुत सुंदर प्रकाश करता है, लेकिन भगवान सूर्य जो देवी भी है वो भी दो पहन का समय दीपक की कोई भगवान के नेत्र इतने सुंदर है, कमल के गर्भ में जो सौंदर्य है भगवान के नेत्र में चुरा रहा है। ऐसे नेत्रों से आपने हमारे कर सकते उस सुंदर नेत्र से भगवान ने ज्योतियों का अवलोकन किया है और मुस्कुराया है, यहाँ तक कि अपने मन के भाव को इंद्रियों से भरना है उधर जाना है इधर जाना है इस तरह से ज्योति के जिसकी बात पर विवे करते थे देखते थे स्वीकार मैंने कर सब तरह से उस स्वीकारात्मकों में दृष्टि से अवलोकन से देखा उन्होंने इस कारण से गोपियाँ सब कुछ छोड़ करके युक्ति हो चुकी है राशि हो गई है। गोपियाँ वृंदावन में इसलिए नहीं आए थे कि कुछ दिन के बाद या एक रात को किसी को क्या राष्ट्र विहार करके आ गया होता बड़ा तो छोड़ा ऐसा त्याग कोई भी ऋषि मुनि महापुरुष कभी कर ही नहीं सकते। देखे देखे प्रत्यावर्तन की आशा से त्याग नहीं किया, देखा जाता है कि कुछ भक्तों ने त्याग किया लेकिन उनका त्याग किस काल के लिए जैसे भ्रम हो जाए भगवान के लिए घर छोड़े लेकिन भगवान के पास तो धन मिल गया फिर घर लगता है ना, तो भक्त उच्च कोटि के भक्त भ्रम महाराज माने जाते हैं। परंतु यदि उनके त्याग की तुलना की जाए गोपियों के साथ उसका कभी बन ही नहीं सकता, किसी के साथ गोपियों के त्याग की तुलना नहीं की जा सकती कभी किसी भी अंश में जैसा उन्होंने छोड़ा कृष्ण के लिए। यही है गोपियों का बध, इसी को भगवान से व्यंग की भाषा में कहते हैं कि आपने हमारा बध कर दिया है और इस वन में ला करके अब विरह के ज्वाला में हमको जला रहे हैं। एक तो वैसे अपने बध कर दिया हमारा, हमारे चित्त को खींच लिया आकर्षित कर लिया घर गृहस्थी से और यहाँ ला करके अब विरह विस्तृंग ज्वाला में हमें दग्ध कर रहे हैं। हे प्रियतम आप शीघ्र से शीघ्र आइए। इस प्रकार से ये प्रार्थना है और इस प्रार्थना में भगवान के अद्वितीय अप्रतिम सौंदर्य का निरूपण किया गया है। कमल के गर्भ में जो सौंदर्य है उसको आपके नेत्र ने चुरा लिया है। ऐसा नहीं है कि अब कमल के सौंदर्य को जब आंखों ने लिया तो आंखों की शोभा बढ़ गई, नहीं, इसका अर्थ है कि कमल में कोई सुंदरता रही नहीं। इसको बड़े बड़े
आचार्यों ने भक्तों ने अपने शब्दों में कई प्रकार से कहा है, मैं कुछ पद श्रील बिलमंगल ठाकुर के यहाँ पहले उद्धृत किया था, इसके पहले जब गोपी जी हुआ था, काफी तो यहाँ पर सब लोगों को सुलभ नहीं है। उन श्लोकों का यहाँ पर थोड़ा आस्वादन करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि मुख्य रूप से भगवान के श्रीअंग सौंदर्य का वर्णन है। आंखें उपलक्षण है, आंखों की सुंदरता से समग्र सौंदर्य का वर्णन। बिलमंगल ठाकुर एक श्लोक में कहते हैं, लीला यताभ्याम रससी तलाभ्याम लीला ऋणाभ्याम नयनम दुजाभ्याम आलोकयद अद्भुत विभ्रमाभ्याम काले कदा कारुणिक किशोर। इसमें बिलमंगल ठाकुर प्रार्थना करते हैं श्री कृष्ण अपने परम सुंदर नेत्रों से हमको कब देखेंगे, ये प्रार्थना है, अभिलाषा है, लालसा है कि मैं कब उनका दर्शन करूंगा और वे कब स्नेह भरी दृष्टि से हमको देखेंगे। कौन कारुणिक किशोर श्री कृष्ण किशोरावस्था संपन्न है, जो किशोर कहा जाता है, किशोर अवस्था में जो व्यक्ति है वह किशोर। ऐसे संसार में सबकी किशोरावस्था आती है और देवताओं के लोक में भी अनंत लोग किशोर हैं, आगे होंगे, जन्म लेंगे, लेकिन वास्तव में किशोर शब्द कहा जाता है तो उसका तात्कालिक अर्थ होता है वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण। किशोर केवल किशोर कहा जाए, शिकागो में हम लोगों का मंदिर है, उसमें जो श्री विग्रह स्थापित है उसका नाम ही है किशोर किशोरी। और सब जगह श्री राधा रानी का नाम पहले रहता है, लेकिन वहां पर कृष्ण का नाम पहले है। कोई नहीं कहता है किशोरी किशोर जय किशोरी किशोर, ऐसा नहीं, किशोर किशोरी जय किशोर किशोरी, किशोर नाम ही है। यह प्रश्न उठेगा ही नहीं कौन किशोर, किशोर मतलब श्री कृष्ण, नव जौवन से नित्य नव जौवन में रहते हैं, यौवन के पहले जो अवस्था आती है जिसको नव जौवन कहते हैं वो है किशोर, किशोर अवस्था, नित्य नवीन प्रस्फुटित यौवन। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण अब युवक होंगे, अब युवक होंगे, लेकिन नित्य किशोर बने रहते हैं। बिलमंगल ठाकुर कहते हैं कि ऐसा किशोर परम सुंदर कारुणिक कारुणिक है, कारुणिक अर्थ है कि मेरे दुख को देख करके वे इस दुख को अवश्य दूर करेंगे, या मेरे दुख को वे समझते होंगे, मैं उनके विरह में दुख भोग रही हूँ इसको जानते हैं और मेरे दुख को दूर करना चाहते हैं, इनका स्वभाव है, सहज करुणा है, सहज दया का भाव है। वह कारुणिक किशोर जो सहज स्नेह से भरे हैं श्री कृष्ण, कब अपने दोनों नेत्रों से नाम अवलोकयिष्यति, कब हमें देखेंगे। दोनों नेत्रों की विशेषता जैसा इस श्लोक में बताया गया है, इस पद में भी नेत्रों की विशेषता बताई जा रही है, लीला यताभ्याम रससी तलाभ्याम। लीला यताभ्याम, लीला का अर्थ है नेत्रों का सहज संचालन, देखना हाव भाव पूर्वक उसी को देखना स्नेह से, और खास करके उज्ज्वल रस के भावों के अनुसार जब अपने नेत्र संचालन करते हैं किसी व्यक्ति पर मंद स्मित के साथ, तो इसको लीला कहा गया है। इस श्लोक में लीला और आयताभ्याम, आयत का अर्थ है समूह या खजाना, एक अद्भुत रस संचार करते हुए श्री कृष्ण देखते हैं कि उस रस वैचित्री के साथ, उस रस वैचित्री का आगार है भगवान का नेत्र। ऐसे दोनों नेत्रों से कदा आलोक करे, कदा कस्मिन काले, कब वो समय आएगा कि श्री कृष्ण अपने इन नेत्रों से हमको देखेंगे। रससी तला ध्यान, रस विशेष के कारण, उज्ज्वल रस विशेष के कारण जिनके नेत्र शीतल हैं। संस्कृत में शीतल का अर्थ बहुत सुंदर होता है, और शीतल का अर्थ सीधा साधा भी होता है, और शीतल का एक अर्थ होता है स्निग्ध, स्निग्ध जिसमें स्नेह मिला हुआ है। जैसे कोई भोजन बनाया जाता है आटा से कुछ बनाया जाता है तो उसमें घी डालते हैं, घी कहीं स्नेह कहा गया है संस्कृत में, स्नेह सिक्त है। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि शीतल है, इसमें तो सचमुच कहीं स्नेह भरा हुआ है, स्नेह सहज प्रेम से शीतल दृष्टि, जिसमें रस के कारण शीतलता है। ऐसे नेत्रों से मुझे कब देखेंगे। और नेत्र का और विशेषण है नीला रुणाभ्याम, श्री कृष्ण के नेत्र में बीच में कालिमा है, काला है, कनूनी का जिसे कहते हैं, नेत्र तारा काला, और उसके किनारे किनारे अरुणिमा है ललाई। श्री कृष्ण के दोनों नेत्र नील और अरुण वर्ण के हैं, बीच में नील काला और किनारे किनारे अरुण्य है। नैनाम्बुजाभ्याम, श्री कृष्ण के दोनों नेत्र कमल से भी अधिक सुंदर हैं। अद्भुत विभ्रमाभ्याम, श्री कृष्ण के नेत्रों में अद्भुत विभ्रम है। विभ्रम, विभ्रम का ऐसे अर्थ होगा विशेष भ्रम, विशेष चाल, अद्भुत तरीके से देखना, इशारा करना, विभ्रम। विभ्रम के कई अर्थ हैं, ऐसे दो शब्दों से बना है विभ्रम। भ्रम का अर्थ है भ्रमण करना, और भ्रम का अर्थ लीला भी होता है, भ्रम का अर्थ संकेत इत्यादि सब, भ्रम का अर्थ भ्रमण करना, विशेष भ्रम है। नेत्रों से अनेक प्रकार के भावों को, संकेतों को भगवान व्यक्त कर देते हैं, इसको उनके आंखों का विभ्रम कहा गया। विभ्रम का अर्थ विशेष भ्रांति नहीं हुआ, विभ्रमाभ्याम अद्भुत विभ्रम, अद्भुत माधुरी विशेष श्री कृष्ण के नेत्रों से प्रकट होता है, अद्भुत तरीके से देखते हैं। तो ऐसे अद्भुत विभ्रम वाले नेत्रों से श्री कृष्ण कब हमें देखेंगे, कभी कभी प्रार्थना की जाती है कब मैं उनको देखूंगा, कब आंख भर करके देखूंगा, और कभी कभी प्रार्थना होती है कि कब वे हमको देखेंगे। नीचे वाले श्लोक में इसमें जो है उसमें कहते हैं बाले न मुग्ध चपले न दिलोकिते न मन्मान से किमपि चापल मुद्वहन्तम् लोले न लोचन रसायन मिक्षणे न लीला किशोर मुपगो युक्ति उत्सुता स्म। कहते हैं कि श्री कृष्ण को जिन्हें लीला किशोर कहते हैं, लीलामय किशोर, सदा लीला करना, अनेक विविध लीलाओं को करते रहना, तो जो लीलामय किशोर है तो लीला किशोर कह रहे हैं। लीला किशोर, लीला किशोर को, श्री कृष्ण को हमें लोलेना इक्षणेना अपने चंचल या कृष्णार्थ श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से व्याकुल नेत्र से उपगुहितुम उत्सुकासना, हम अपने नेत्र से श्री कृष्ण का आलिंगन करने के लिए छटपटा रहे हैं, आंख से आलिंगन करना। आलिंगन शब्द ये बता रहा है कि बहुत निकट से श्री कृष्ण को देखने की लालसा है, ये आलिंगन का अर्थ। जैसे बाहों से श्री कृष्ण का आलिंगन किया जाता है, ऐसे बिलो मंगल ठाकुर कहते हैं, या उनके भाव में गोपियाँ, गोपियों के भाव में वो बोलते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हम लीला किशोर प्रतिक्षण मधुर लीला करने वाले श्री कृष्ण को आँखों से, श्री कृष्ण का आँखों से आलिंगन करना चाहती हैं। इच्छणे न, और इच्छण का विशेषण है लोले न, लोल का अर्थ चंचल, और यहाँ लोल का अर्थ है कृष्णा, कृष्णा से व्याकुल। श्री कृष्ण को देखने की लालसा से मेरा नेत्र भक्त, मेरे नेत्र छटपटा रहे हैं, ऐसे नेत्र से हमें कृष्ण का आलिंगन करना चाहती हैं, वो चाहते हैं। कैसे श्री कृष्ण को, कैसे श्री कृष्ण का आलिंगन करना चाहते हैं? बालेन मुग्ध चपलेन विलोकितेन मनमान से किमति चापलमुद्वहन्तम्। बालेन जो अच्छे कोमल हैं, जिनका अवलोकन दृष्टि का ही विशेषण बता रहे हैं, बालेन अति कोमल, मुग्ध चपलेन जो परम सुंदर है और चंचल है, ऐसे विलोकितेन ऐसे दृष्टि से श्री कृष्ण मेरे हृदय में, मेरे मन में चापलम उद्वहनकम, चंचलता का सृजन कर रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण के नेत्रों की छवि को जब से मैंने देखा, तब से मेरे मन में एक अद्भुत अनिर्वचनीय चापल्य उत्पन्न हो गया है। क्या चापल्य? श्री कृष्ण को देखने की लालसा, श्री कृष्ण को देखने की लालसा उत्पन्न हो गई है। श्री कृष्ण को देखने की लालसा कैसे है? श्री कृष्ण जब अपने नेत्रों से देखे मुझ पर, तो मुझ में, मेरे मन में चापल्य छा गया। चापल्य का एक अर्थ होता है चंचलता, और चंचलता का यह अर्थ है कि घर के काम धंधों में मेरा चित लगता था पहले, जब से श्री कृष्ण ने चपल नेत्र से हमको देखा, उनको मैंने देखा, तो मेरे हृदय में चापल्य बढ़ गया, चंचलता बढ़ गई। अब घर गृहस्थी में काम नहीं लगता है, कुछ नहीं, केवल श्री कृष्ण को देखने की लालसा रहती है, इसे चापल्य कहते हैं। कीमति कुछ अद्भुत आश्चर्य, जिसको मैं वाणी से कह नहीं सकता, जिसको वाणी से नहीं कहा जा सकता, उसको अनिर्वचनीय कहते हैं, जिसका निर्वचन नहीं किया जा सकता, वचन में जिसको नहीं बांधा जा सकता, ऐसा चापल्य मेरे हृदय में उदित हो रहा है। अपने कृष्णा से व्याकुल आंख से इस लोचन रसायनम लीला किशोर को आलिंगन में लेना चाहते हैं, आंखों से आलिंगन करना चाहते हैं। आंखों से आलिंगन का अर्थ है कि बहुत निकट से पूरा आंख भर करके कृष्ण के सौंदर्य को देखना, यही है आलिंगन। श्री कृष्ण को यहाँ कहा गया लोचन रसायनम, जो आंखों के लिए रसायन है, लोचन रसायन ऐसा कहा जाता है कि आंखों के लिए रसायन ही पुष्टिकारक होता है। आँख में कुछ डालने से आँखों की ज्योति बढ़ती है, या अंध कम से कम नहीं आता है जल्दी। श्री कृष्ण लोचन रसायन है। आंखों से यदि कृष्ण का दर्शन किया जाए तो लगता है कि फिजिकली भी आंखों की ज्योति बढ़ जाएगी। लोचन रसायन है। सबसे बेस्ट आई ड्रॉप भगवान का विग्रह है। सबसे बेस्ट, तो इसे देखना चाहिए। लोचन रसायन नैनामृतम, नैन के लिए अमृत। भगवान को देखने की बहुत लालसा है, और देखने की लालसा इसलिए है कि उनके बारे में जिसने सुना है, वास्तव में जिसने सुना है और पहले देखा है, उसको देखने की और सुनने की लालसा और अधिक सताती है, उसकी लालसा और बढ़ जाती है। कृष्ण को देखने के बाद असली विपत्ति चालू होती है। उनको देखे बिना रहा ही नहीं जाएगा। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद ने एक श्लोक में लिखा है, चेतावनी देते हैं कि गोविंद नामक लड़के को मत देखना। चेतावनी देते हैं श्लोक में, कहते हैं कि हे सखे, यदि परिवार में बंधु जनों में उनके साथ रहने की अभी तुम्हारी इच्छा हो और वो अच्छा लगते हैं, तो भूल करके अभी जमुना के उपकंठ में केसी घाट में स्थित थे गोविंद नामक लड़के को मत देखना, नहीं तो फिर परिवार में रहने की इच्छा नहीं रह पाएगी और बच्चा स्त्री परिवार कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। यदि अगर यह इच्छा है कि परिवार में मन रमे, आनंद का अनुभव हो रहा है, तो कृष्ण को देखने मत देने, गोविंद देव को देखने मत देने। देख लोगे तो फिर सब खत्म हो जाएगा। देखिए, एक तरफ ये भाव है कि भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इनको देखना ही जीवन का सफल माना जा रहा है, आंखों का परम फल। दूसरे तरफ अज्ञानियों का ऐसा समाज है, दृढ़ अज्ञानी, जो भगवान के श्री अंग को रूप को मानते हैं, और फिर भी मनुष्य समाज उनको कहता है पहुंचे हुए महात्मा। हाँ यार, ये प्रशंसा कैसे, जो सत्यव्रत महाराज कहते हैं, जैसे किसी अंधे आदमी का गुरु अचक्षु बन जाए। अचक्षु मतलब जिसको आंख ही नहीं है। शिष्य कैसा है, सॉरी इस प्रसंग में थोड़ा ला रहा हूं मैं, शिष्य कैसा है, आंख वाला था, शिष्य ऐसा है कि उसकी आंखें पहले थी लेकिन धीरे धीरे कमजोर हो गई कुसंग से, इधर उधर गलत प्रवचन सुनने से अंधता छा गई। और गुरु कैसा है, जिसको आंख है ही नहीं शुरू से, अचक्षु, आंखें स्कंध में प्रवृत्त किए हैं, तो गुरु पर ही बोले हैं। असली गुरु अष्टक वही है, यही पर गुरु कैसा होता है, क्या होता है। तो कहते हैं कि जैसे अंधे का गुरु अचक्षु हो जाए, जिसको आंख है ही नहीं, इस पर एक टीका में लिखा गया है कि शिष्य को तो हो सकता है कुछ धुंधलाहुन दिखाई पड़ रहा हो। धुंधलाहुन दिखाई पड़ने का मतलब ये है, हो सकता है किसी वैष्णव का प्रवचन सुना हो तो थोड़ा आंख खुला हो हल्का, लेकिन गुरु तो पूर्ण परमहंस, और वो किसी के सत्संग की उसे जरूरत नहीं, मानता है पहुँचे हुए हैं, किसी का सत्संग नहीं, कुछ नहीं, कोई तीर्थापन नहीं, साधु संग नहीं, तो इसको तो आँख मिली ही नहीं शुरू से, तो बिल्कुल चौपट है, आँख बिल्कुल नहीं। और ऐसा व्यक्ति अंधे का गुरु बनाया जाता है, अंधे का गुरु, जिसके वो अंधा है लेकिन कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा है, बेचारे को कमजोर संशय होता है, उनके लिए भगवान का रूप है, पूरा पूरा नहीं समझता। तो इसी तरह से है ना, जो अज्ञ लोग हैं इस संसार में गुरु बनाए जाते हैं, गुरु लोग उनके नाम के, लेकिन ऐसी मति देते हैं जिस मति से वो अंधम तमह घोर नरक में चला जाते हैं। वास्तविक पंथ, बिल्कुल प्रकाश का पंथ, ब्राइट पंथ, सच्चा मार्ग यही है कि भगवान के रूप से प्रेम किया जाए, भगवान के रूप में अनुराग होना चाहिए, अन्यथा भगवान से, भगवान की भक्ति का कोई मतलब ही नहीं रहा। जहाँ उनके रूप के प्रति सहज अनुभक्ति है, सहज समर्पण है, सेवा है, पूजा है, सब है, यही तो भक्ति है। लेकिन जहाँ रूप की धारणा ही नहीं है, वहां तो भक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है, ज्ञान कभी जन्म ले ही नहीं सकता है, जब ये सब कुछ है ही नहीं धारणा, तो ज्ञान क्या था, वास्तव ज्ञान होगा, कोई ज्ञान नहीं। इसलिए शास्त्रों में बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है ऐसे लोगों के लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये निर्विंदस विमुक्त मानिमस तयस्त भावाद विशुद्ध बुद्ध आरुह्य कृष्ण परम पदम ततः पतन तधो नागत विष्ण बंध। हे प्रभु, भक्तों के अलावा जो अन्य लोग हैं, अन्य अन्य से तात्पर्य है अन्य तथा कथित अध्यात्मवादी लोग, जो अनादृत विष्ण बंध है, जो आपके श्री चरण का, आपके श्री अंग का आदर नहीं करते हैं, इसे स्पिरिचुअल नहीं मानते, इसे दिव्य मान करके इसे प्रेम नहीं करते हैं, तो ऊंचा चढ़ करके भी गिर जाते हैं। तपस्या सत्कुल आदि में जन्म प्राप्त होता है उनको पूर्व कर्म से, लेकिन भगवान के चरणों का अनादर करने से अनादृत जिस्म दंग रहा है, तपन गिर जाते हैं, और भक्त कभी नहीं गिरते हैं। तथा न ते माधव ताव का भ्रसन की मार्गा कई बद्ध करेंगे, लेकिन आपके भक्त जो आपके प्रति सौहार्द की भावना रखे, आपको अपना कोई न कोई प्रिय मानते हैं, तो ये तो रास्ते में भी नहीं गिरते हैं, पहुंचने के बाद क्या गिरेंगे। तथा न ते माधव ताव का क्वचित भ्रसन की मार्गा, मार्ग में स्लीप तक नहीं करते हैं, ये भ्रसंति का अर्थ ये है, और पतंति का तो प्रश्न ही नहीं। पर वो जो ज्ञानाभिमानी है, जो आपके श्रीअंग का आदर नहीं करते, श्री चरणों का आदर नहीं करते हैं, बल्कि निरादर करते हैं, उसे माया का अधिकार कहते हैं, उसे प्राकृत कहते हैं, तो ये लोग तो सिद्धि जो कुछ मानो अपनी सिद्धि तक जा करके वहाँ से भी गिर जाते हैं, साध्य से भी गिर जाते हैं, और भक्त लोग तो रास्ते में भी नहीं गिरते। और वो भी कहा गया है कि आंख बंद करके चलते हैं तब भी न स्लीप करते हैं न गिरते हैं। भवन निमिल लगा नेत्र न खले न पटक दिया, न स्खलित होते हैं न गिरते, आंख बंद करके चलते हैं। आंख बंद करके दौड़ते हैं तो ठोकर लगेगी, स्लीप करेंगे, चाहे टकराएंगे, गिरेंगे, नहीं। आंख क्या है? श्रुति स्मृति, वेद शास्त्र और ये सब श्रुति हैं, और पुराण आदि स्मृति हैं, इनको पूरा पूरा शास्त्रों का ज्ञान नहीं भी हो श्रुति स्मृति का, पर श्री कृष्ण में ममता है, वे मानते हैं कि श्री कृष्ण हमारे हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रभु हैं, हम उनके दास हैं, केवल इतना ही माने तो सब प्रकार के विधि विधान से हीन होने के बाद भी वो न स्खलित होगा न गिरेगा, वो पहुँचेगा भगवान के पास। ये स्थिति है, तो वास्तविक समीचीन मार्ग यही है, जहाँ भगवान के श्रीअंग से, श्रीहस्त कमल से, पद कमल से और मुखारविंद से अलग से पितांबर से सबसे सहज प्रीति सहज अनुराग, बल्कि वही जीवन है, उसको देखे बिना रहा नहीं जा रहा है, रहा नहीं जा रहा है। गोपियों की स्थिति तो सर्व विलक्षण है, उनके लिए ये नीति का उपदेश नहीं किया जा रहा है, पर इन श्लोकों को पढ़ने पर, कृष्ण करुणामृत के इन श्लोकों को पढ़ने पर तब पता चलता है कि कृष्ण के श्रीअंग से कैसे प्रेम किया जाता है, कितना प्रेम है गोपियों का। ऐसे लीला किशोर जिन जो लोचन रसायन है आंखों के लिए अमृत है, उनका हम अपने आंखों से आलिंगन करना चाहते हैं, आंख से आलिंगन, आंख से आलिंगन करने में कौन रोकेगा। यदि वास्तव में भगवान के मंदिर में कोई जाए और भगवान को देखे, नख से सिख तक देख रहा है, तो आंखों से वो आलिंगन कर रहा है, आंखें आलिंगन करती हैं, उसके देखे बिना नहीं रह सकती, मन आलिंगन करे तो उसको कौन देखेगी, जीवाह को ही नहीं रोक सकते, तो जगह से जगह भूजा कर रोकेंगे, अवसर में नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन आंख से आलिंगन कोई कर सकते हैं। गृहितुं उच्चिकास्म, हम लोचन रसायन लीला किशोर का आलिंगन करना चाहते हैं। गोपियों के ही भाव में बेलमंगल ठाकुर जी कहते हैं, और फिर भगवान के अन्य अंगों का भी वर्णन करते हुए नेत्र का वर्णन करते हैं। बीच वाले श्लोक में करो शरदुजाम्बुज क्रम विलास शिक्षा गुरु, इसमें अपने विलोचन को अपने आंख को उपदेश करते हुए बिलवंगल ठाकुर कहते हैं, हे विलोचन विलोकया, हे हमारी आंख तुम देखो, क्या देखो, अमृतम, अमृत को देखो। अमृत पिया जाता है लेकिन श्री कृष्ण को कहा गया अमृतम विलोकय, अहो मह सैशवम, मह सैशव, मह का अर्थ श्री कृष्ण वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण महोत्सव स्वरूप है, मह का अर्थ महाउत्सव, शैशवम सौकुमार सुकुमारता की मृत्यु, मह सैशव, देखो देखो ये अमृत देखो, हे मेरे नेत्र तुम्हें अमृत देखो, अमृत देखो अर्थात अपने आंखों में डालो अमृत, और आंखों में अपने में अगर ये अमृत डालोगे तो तुम्हारी ज्योति बढ़ जाएगी और जीवन में कभी अंधता नहीं आएगी। और यदि इस लीला किशोर को, इस अमृत को यदि नहीं देखे, नहीं डाले आंख में, तो सब जगह केवल अंध ही रहेगा, अंधकार ही छाया रहेगा, कान्हा बिना सगर और अंधार, कृष्ण के बिना सब जगह केवल अंधकार ही अंधकार, वास्तविक दृष्टि वास्तविक नेत्र शक्ति यही है कि कृष्ण को देख। तो कृष्ण अमृत है, जैसे मैं पहले कहा कि आंखों में रसायन को अमृत औषधि ही डालने की परंपरा है, वैद्य लोग ऐसा बताते हैं, आंखों में लगाया जाता है, जैसे अंजन लगाया जाता है या कोई विशेष दवा दी जाती है, तो आंखों के लिए सबसे पुष्टिकारक सब तरह से और उसके दृष्टि को खोलने वाली चीज है। कि कैसे हैं श्री कृष्ण, सबसे पहले हाथ का वर्णन कर रहे हैं, करौ पदौ दृशौ, तीन अंगों का वर्णन कर रहे हैं, तो इसके द्वारा सर्वांग सौंदर्य का वर्णन समझना चाहिए, कि पदौ नीचे चरण कमल का वर्णन कर रहे हैं और बीच में करौ और ऊपर दृशौ आंख, उत्तम मध्यम अध नीचे का अंग है श्री चरण और बीच का श्री कर और श्री नेत्र। सबसे पहले हाथ का वर्णन करते हैं, कैसे हैं श्री कृष्ण, उनके हाथ का वर्णन कर। करौ शरद शरद दिज अम्बुज क्रम विलास शिक्षा गुरु, शरद दिज शरद सरदी और ज का अर्थ है जन्म, सरदी जो शरद काल में उत्पन्न हुआ है अम्बुज कमल, उसके क्रम विलास के दोनों शिक्षा गुरु हैं। शिक्षा गुरु मतलब उसको शिक्षा देने वाले हैं। क्रम का क्या अर्थ है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा चैतन्य चैतन्यमृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु जब कहते हैं, इस श्लोक की व्याख्या करते हैं, आत्मा रामास्त मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वंत है तो किन भक्ति लिखें जो तुड़ हरि। उरुक्रमे तो क्रम शब्द का क्या अर्थ है, श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं क्रम शब्द का अर्थ है पद न्यास, जो त्रिविक्रम कहे जाते हैं, तीन पग में सारा ब्रह्मांड ना पड़े भगवान। क्रम शब्द का अर्थ पद न्यास और क्रम शब्द का अर्थ लीला भी है, गुण चरित्र जो भी है वो भी लीला है और वो भी क्रम शब्द से कहा जाता है। उरुक्रम का अर्थ जिनकी महान अद्भुत अनंत लीलाएं हैं वे हैं उरुक्रम। यहां पर वही अर्थ है कि किसी शरद कालीन में सरोवर में खिले हुए कमल में जो क्रम विलास है, इसका लीला विलास है, लीला विलास आदि की शिक्षा देने वाले भगवान के दोनों हाथ हैं। इसका अर्थ है कि परम शीतल परम सुकुमार परम सुगंधित कमल में जो जो क्रम होगा, जो जो उसकी विशेषताएं होंगी, उसको तो शिक्षा देने वाले हैं, अर्थात उससे भी बढ़कर गुरु हैं भगवान के चरण, भगवान के हस्त कमल। उनमें साहित्य सौकुमार्ग और सौगंध सौंदर्य आदि भरे पड़े हैं। तो उस कमल के विशेषताओं के शिक्षा जरूर है, जो सब तरह से बढ़कर जो श्री गोपियां कह रही हैं वही बात इसमें है। भगवान के हाथों में सुगंध है, सुंदरता है और सुकुमारता है। सुकुमारता, सौगंध, सौंदर्य और शीतलता, साहित्य। कमल वैसा कहाँ सुंदर हो सकता है, कमल के फूल में वो सुगंध और वो सुकुमारता वो कोमलता कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के दोनों हाथों में ये सब विशेषताएं हैं। पदौ विबुध पाद प्रथम पल्लवो लंगिनौ, और श्री कृष्ण के दोनों चरण कैसे हैं, चरण तल अंगुली आदि के साथ चरण ऐसे विबुध कल्प पादप देवताओं के लोक में जो वृक्ष मिलते हैं जिसमें कल्प वृक्ष कहा जाता है, तो कल्प वृक्ष में जब पहली बार कोमल पत्ता आता है बहुत अरुण होता है, लाल और अति सुकोमल। देवताओं के वृक्ष कल्प वृक्ष में प्रथम बार आए हुए पत्ते का भी उल्लंघन करने वाले श्री कृष्ण के चरण कमल, उत्लंघन उत का अर्थ है उससे भी बहुत अधिक अरुण और अधिक कोमल श्री कृष्ण के चरण कमल है। इतना सुंदर भगवान का चरण कमल है, इतना कोमल सुकुमार और उसी तरह से सुगंधित। तो केवल साहित्य और केवल मृदुता और आरुण्य का वर्णन करने के लिए इन पत्तों से उपमा दी गई, और सुगंध शीतलता आदि तो कमल से उपमा दी जाती। कल्प वृक्ष के प्रथम उगे हुए कोमल पत्तों का उल्लंघन करने वाले मतलब उनसे बढ़ करके अरुण और बढ़ करके सीकर श्री कृष्ण के चरण सुनेंगे। दृषव आंखों के विषय में तो क्या कहा, दृषव दलित दुर्मद त्रिभुवन उपमान श्रिय, त्रिभुवन उपमान श्रिय, तीनों लोकों में बहुत से उपमान हैं। किसी सौंदर्य का निरूपण करने में कुछ उपमाएं दी जाती हैं, तो उन उपमाओं का मद बढ़ गया था। तीनों जगत में जो उपमाएं हैं उनका मद बढ़ गया था। अगर किसी को सुंदर बताना है, विशेष बताना है, तो हमसे तुलना की जाती है, वही उपमान, उनका मद बढ़ गया था। और श्री कृष्ण के दोनों नेत्र ऐसे हैं, दलित दुर्मद त्रिभुवन उपमान से, त्रिभुवन में जितने भी उपमान थे हैं उनके अभिमान को बिल्कुल दलित कर दिए, समाप्त कर कुचल दिए। कौन कौन उपमान है, खास करके आंखों से जो उपमा दी जाती है वो है जैसे मृग, मृग के आंख से किसी सुंदर आंख का वर्णन किया जाता है। तो मृग और मीन, मीन मतलब मछली, आंखों की चंचलता का निरूपण करने के लिए मछली के साथ उपमान दिया जाता है। मृग हरिण, हरणी और मीन और चकोर, चंचरिक, कमल, कमल से कमल ही एक उपमान है। चंद्रमा मुख की उपमा दी जाती है, मुख चंद्र के, खंजर, खंजरिक, खंजन पक्ष, खंजन, चंचरित, मीन और मृग, चंद्रमा, इन सब का गर्व समाप्त है। इन लोगों का मन बहुत बड़ा हुआ था कि किसी के सुंदरता का निरूपण करने के लिए हमसे लोग साक्ष दिलाते, इसके समान आंख है, इसके समान आंख है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अवतार लिए तब इनका सारा गर्व चला गया। जहाँ भी उपमाएं जहाँ जहाँ थी वो सब भागी। अब तो हमारा यदि कोई कहेगा, हमको उपमा देगा, तो उपमाएं दुखी होने लगी कि नहीं, हम कहाँ फिर किसी के हाथ के समान या नेत्र के समान या पद के समान हैं, बेकार हमारी उपमा दी जा रही, हम हमारा नाम हंसाया जा रहा है। इसीलिए लोग जहाँ तहाँ भाग गए कि हाँ अब कोई उपमा न दे, नहीं तो हमारी बेइज्जती हो गई। सब भाग गए जहाँ तहाँ। इतने श्री कृष्ण के सुंदर नेत्र हैं, दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं। इस श्लोक में शरद उदास साधु जात सत्य सरस जो दर श्री निषा दृशा, इस श्लोक में भगवान के सौंदर्य का वर्णन है कि कोई वह आदि कुछ नहीं, यह सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। सूरदास जी ने एक पद लिखा है, इसको यहाँ पर पढ़ा देंगे। उपमा हरितन देख ल जाने, हरितन का अर्थ हरि, श्री कृष्ण के श्रीअंग को देखकर उपमाएं सब लज्जित हो गई, सब लज्जित हो गई और जहाँ तहाँ भाग गई। उपमा हरितन देखी ल जानी, उपमा हरितन देखी ल जानी, कौ जल में कौ बननी रही दूरी, कौ कौ गगन समानी, उपमा हरितन देखी ल जानी। उपमाएं भगवान कृष्ण के शरीर को देख करके लजा गई और भागने लगी। कोई वन में भागी और कोई जल में भागी और कोई कोई गगन समानी और कोई कोई आकाश में भाग गए, सब भागी। कोई अब हमसे कोई उपमान ना दे, नहीं तो हमारी केवल बेइज्जती होगी, भाग गए। जितनी भी उपमाएं हैं वास्तव में या तो वन में रहती हैं या जल में रहती हैं या आकाश में। सूरदास जी कहते हैं कि ये भाग गई, गोपियाँ कह रही हैं, वास्तव में गोपियों के भाव में सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के श्री अंग को देख करके उपमाएँ भाग गई। उपमान कहते हैं, उपमान का अर्थ कसौटी, कसौटी पर कसा जाता है कि इसकी आँख नीम जैसी है या हरिण के बच्चे के नेत्र के समान उसके नेत्र। ये सब उपमाएं अब श्री कृष्ण के अंग को देख करके भागी। अब तक बहुत मद बढ़ा था, गुलमंगल ठाकुर कहते हैं कि बहुत मद बढ़ा था, क्योंकि उपमान है स्टंडर, स्टंडर सब कुछ इन पर कसा जाए। जल में धस गई, चली गई और कुछ वन में छिप गई, कोको गगन समान। कौन कहाँ भागा है इसको सूरदास लिखते हैं, गोपियाँ कहते हैं मुख निरखत शशि गयो अम्बर को तड़ित दसन चिहेर नीन कमल कर चरण नयन डर जल में कियो बसेर। मुख निरखत शशि गयो अम्बर को, श्री कृष्ण का मुख जब देखा चंद्रमा ने तो भागा आकाश में, आकाश में डर कर भाग गया कि हमारे साथ कोई उपमा नहीं देगा, आकाश में गया। मुख देखत, मुख निरखत शशि गयो अम्बर को, भागा है ना चंद्रमा आकाश में भाग गया है, कहाँ उतरता है, कभी नहीं आता है नीचे। इतना सुंदर चंद्रमा अगर नीचे आवे तो बहुत आनंद की बात होगी, लोग बात करेंगे देखेंगे। सूर्य का नीचे आना तो खतरनाक है, लेकिन चंद्रमा आवे तो कोई बात नहीं, तो लोग तो वहीं पहुंचना चाहते हैं। चंद्रमा के पास पहुंचना चाहते हैं, सूर्य के पास पहुंचने का कोई साथ नहीं करता। एक बार एक गिद्ध बहुत जोर में उड़ा था पानी में, तो उसके पंख जल गए, गिर गया था। जटाई जी का भाई भाई था संपाती, तो आजकल के लोग तो साहस ही नहीं कर सकते कि हम सूर्य लोक जाएंगे, लेकिन चंद्र लोक जाने का साहस करते हैं और वहां भी जा नहीं सकते, जा नहीं पाते हैं, और खूब झूठ बोलकर प्रचार करते हैं कि हम गए थे, हम गए थे, हम गए थे। इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि नहीं गए हैं, एक उनका झंडा बता रहा है। लोग कहते थे पहले कि चंद्रमा पर हवा नहीं है, और ये लोग दिखाए कि हम चंद्रमा पर झंडा गाड़ कर आए हैं और झंडा हवा में लहरा रहा है। इसका अर्थ है कि कहीं किसी स्थान पर झंडा गाड़ करके और फोटो ले ली और कहे कि हम वहां से फोटो लेकर के आए। इसे क्या उत्तर हो सकता है, जब पहले तुम कहे कि हवा वहां नहीं है तो पताका क्यों फहरा रही है, क्यों? इसका अर्थ है कि हवा जहां है वहां पर झंडा गाड़ा था। अरे कहते हैं कि वहाँ पर केवल धूल है, पत्थर है, ये है वो है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जहाँ की शीतलता सारे संसार में फैलती है, इतना दूर चंद्रमा है और इतनी शीतलता बिखरता है, और वहाँ खुद ही धूल और पत्थर है, ये कैसे कोई मान सकता है? वहाँ तो शीतलता बिखरने वाला द्रव है ना। चंद्रमा भागा आकाश, जो भी हो हम लोगों को इससे क्या मतलब है? भगवान श्री कृष्ण के अंगों से मतलब है, तो श्री कृष्ण के मुख को देखकर चंद्रमा आकाश में भागा। मुख निरखत शशि गयो अम्बर में तड़ित दसन छवि हेरी, अम्बर गए यदि इतना ही सुनाने को, और बिजली, बिजली भी भागी आकाश में, क्या देख करके? कृष्ण के दांतों की चमक को देख करके भागी। अथवा कड़क बसन छवि हेरी, कोई कोई ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण के पीतांबर को देख करके बिजली भागी आकाश में, इन दशा नहीं ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण का श्री अंग है। श्री कृष्ण के दांतों को देखकर बिजली भागी आकाश में, नीन कमल कर चरण नयन डर जल में किए बसेर बसेर। मछली और कमल की भाग्य तुरंत पानी में डूब डूब करके उधर जल में घुस गए, डर करके भागे। किस डर से? चरण नयन डर, चरण के डर से कमल भाग गया। कोई हम हमारी उपमा न दे दे कमल के, श्री कृष्ण के चरण कमल से, तो भाग गई, कोई ना दे। फिर भी लोग मानते नहीं है, देते ही है। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम की तरह भगवान के अनेक अनेक वंदनाएं हैं जिसमें उनके चरण कमल की वंदना की जाती है, तुलना की जाती है। चरण कमल में प्रणाम, चरण सरोज, सरोज के साथ इतना दे ही देते हैं। तो फिर भी अब कहे तो भागे हैं, कमल और मछली जल में भाग गए। मछलियां भागी भगवान श्री कृष्ण के नेत्र को देख करके, आंख को देख करके भागी, डूब गई। और कमल भी भाग गया कर और चरण के भाव, हस्त कमल और पद कमल, चरण और हाथ के सौंदर्य से फीका होकर के कमल भागा पानी में, आंखों के इतना के भय से भागी मछली में पानी में। जल में कियो बसेरो, ऐसा नहीं कि भागे तो फिर कभी आवे, बास ही पानी में कर दी, पानी के अंदर ही रहते हैं, लाते ही नहीं डर के नए। नीन कमल कर चरण नयन डर जल में कियो बसेरो, भुजा देख यहिराज लजाने विवरण पैठे दार। और श्री कृष्ण गोल और सुंदर लंबी सुवृत्त भुजा को देख करके सांप सब भाग्य बिल में जाकर घुस गए। श्री कृष्ण के भुजदंड की इतना सर्प के देह से दी जाती, तो ये सब भाग्य बिल में, जंगल में या पृथ्वी में जहाँ था इधर उधर भाग गए। विवरण पैठे धाय, धाई दौड़ करके भागे बिल में, भुजा देख यहिराज लजाने विवरण पैठे धाय, कटनीर खत के हरिदर मानो बन बन रहे दुराय। और श्री कृष्ण के पतली कमर को देख करके सिंह भाग करके वन में छिप गया। सिंह की कमर भी बहुत पतली होती है और ऊपरी भाग बहुत चौड़ा होता है। तो श्री कृष्ण ऐसे, तो श्री कृष्ण के कति को देख करके सिंह भागा वन में चला गया। तो कई गांव में आता ही नहीं, बंद बंद रहे दुराए, बंद बंद में छिपा रहता है। गोपियों को ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि ये सही स्नाएं श्री कृष्ण के अंग के शोभा के आगे निरस्त होकर के सब भागे। आजकल कथा में बात कही है तो कुछ लोग सोचते ऐसे भागे हैं कि स्वाभाविक विधाता ने जन्म दिया वन में, लेकिन भागे हैं यह सुनना कितना अच्छा लगता है। भले यह भावुकता पूर्ण वर्णन है लेकिन फिर भी भावमय है ना, अभावमय नहीं है। फिर कृष्ण के पति के सौंदर्य से आप होकर के सिंह भाग गारी देत कबीलिके वर्णक प्रियंग पथ कर देत। और ये जितनी उपमाएं हैं, नीन कमल या सिंह सिंह है या शशि जो भी है और सर्प आदि, जब श्री कृष्ण के अंगों से के साथ इनकी उपमा लोग देते हैं तो उपमाएं जहाँ छिपी हैं जहाँ बैठी हैं होता है वहीं से गाली देती है। फिर हमारा हमारी बेइज्जती किया है, हमारे साथ न दिया, कहाँ श्री कृष्ण का चिन्मय करो या हस्त पद जो नित्य चिन्मय है, नित्य है, आनंद घन है, और कहाँ जड़ कमल चंद्रमा क्षीण होने वाला, घटने बहने वाला, कलंकित कमल मुरझाने वाला तुरंत, वास्तव में सब दुखी हो जाते हैं। और गारी देत कबीन के वर्णन, कभी लोग जब वर्णन करते हैं अपने समय से तो कृष्ण का गुणगान करते हैं, लेकिन माया दुखी होकर के गाली देती है, श्रीअंग पत्तर देत, जब श्रीअंग के साथ तुलना की जाती है तो माया गारी देती है। सूर्यदास हमको शर्मावत नाम हमारो ले, सूर्यदास जी कहते हैं, उपमाएं कहते हैं कि हमारा नाम लेकर के हमको शर्मिंदा शर्मिंदा कर रहे हैं सब कभी, बहुत गाली देते, अभिशाप देते हैं कि उसका कंठ फूट जाए, क्यों ये इस तरह से वर्णन कर रहे हैं, मेरा नाम ले रहा है। जबकि भक्तों का यह स्वभाव है कि भगवान के अंगों का जो वर्णन करते हैं तो सबसे सुंदर वस्तुओं के साथ पत्थर देते, क्या करें, वर्णन किए बिना रह नहीं सकते। जो श्री हस्त, श्री हस्त का वर्णन करें, श्री हस्त कमल ऐसे कहीं देंगे, स्वाभाविक कहते हैं, या वास्तव में करना चाहिए, भक्ति है, फिर भी अब उपमाएं तो गाली देती ही हैं कि क्या कर रहे हैं, कहाँ मैं और कहाँ भगवान का श्री अंग मेरे साथ तुलना कर रहे हैं। इस तरह से श्री गोपियां भगवान के अंग का वर्णन कर रही हैं। बीच में एक जो गीत होगा तो आगे बढ़ें, कौन बहुत कौन गीत गाएंगे भगवान के सौंदर्य पर है। तो बताइए कौन गीत गाएंगे, क्या गाएंगे, ठीक ऐसे इधर बैठ गए, जाते समय ऐसे बैठ, माइक म्यूट कर दीजिए।
हमारे बीच के एक भक्त कवि श्री सिपाही पांडे मनमौजी जी के द्वारा एक रचित गीत है, प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। गोपियां कहती हैं,
कहे दोस्त यही के हम के परवाहन बा, कहे दोस हमार केहू के तनो, यही के हम के परवाहन बा, हवा प्रभु प्रेम के सागर बा, यही के पवले के उठाहन बा, मुस्कात रहे ले सदा हरि जी, दुख में निकसत मुख आहन बा, जब आँख लड़ी मुरली धर से, तब आउर केहू के चाहन बा, तब आउर केहू के चाहन बा। यह हमारा हृदय लुट चुका है, यह हमारा हृदय लुट चुका है, श्याम तेरी छटा माधुरी पे, यह हमारा हृदय लुट चुका है, श्याम तेरी छटा माधुरी पे। यह हमारा हृदय लुट चुका है, श्याम तेरी छटा माधुरी पे, हो श्याम तेरी छटा माधुरी पे, पीत पट पे सुलट पे मुकुट पे, पीत पट पे सुलट पे मुकुट पे, मूर्ति सुषुमा मई सामरी पे। पट पे सुलट पे मुकुट पे, मूर्ति सुषुमा मई सामरी पे। या दिन से वह नंद का छोरा, या बन धेनु चराई गयो है, मोहनी तानन गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है, वादिन से कछु तो ना सोके, रस खान ही ये में समाई गयो है, को उनका हुकान करे करे, प्रगवीर दिखाई गयो है। यह हमारा हृदय लुट चुका है, श्याम तेरी छटा माधुरी, कर सक चिता कर सक नहीं कौन अवयो, नेत्र प्रतिवस्तु पर है उलझते,
भगवान श्याम सुंदर की प्रत्येक अंग में इतनी शोभा है कि गोपियां जहां भी देखती हैं वहीं पर उनका नेत्र अटक जाता है।
चित कर सक नहीं कौन अवयो, नेत्र प्रतिवस्तु पर है उलझते, विधु बदन पे नयन पे चरण पे, विधु बदन पे नयन पे चरण पे, मूर्ति सुषमा मई सावरी पे। विधु बदन पे नयन पे चरण पे, कंज कर पे हरित बांसुरी पे। लाल ने कवि नै सुनियो, अब मेरी गली न ले आइयो ना। आइयो तो करुणा करके अति तेरे सुनाइयो गाइयो ना, गाइयो तो यधरा धरिके मुरली धुनि मंद बजाइयो ना। सरसाइयो ना उर प्रेम व्यथा सुनियाइयो तो तुम जाइयो ना। हमारा हृदय लुट चुका है हम तेरी छटा मां, हमारा हृदय लुट चुका है श्याम तेरी छटा माधुरी पे, हो श्याम तेरी छटा माधुरी पे, पीत पट पे सुलट पे मुकुट पे, मूर्ति सुषमा मई
पूरा ब्रज कृष्ण में दिखता है।
नहीं गोपियां नहीं बोल रहे हैं जो गा रहे हैं। इस
सभी दिखते श्याम जैसे, लगती हर बालिका राधिका सी हो, लगती हर बालिका शीश अपना, शीश अपना कहाँ मैं झुकाऊं, गाय पे गोप पे गागरी पे। शीश अपना कहाँ मैं झुकाऊं, गाय पे गागरी पे। शीश अपना कहाँ मैं झुकाऊं, गाय पे गोप पे गागरी पे। मेरे मोहन आज भी ब्रज के प्रत्येक कण पे हो, आज भी ब्रज के मेरे मोहन तेरा चित्र अंकित, आज भी ब्रज के प्रत्येक कण पे पत्र पे पुष्प पे पालकों पे, पत्र पे पुष्प पे पालकों पे, व्यक्ति पे बाम पे बल्लरी पे। यह हमारा हृदय लिखता है श्याम तेरी छटा माधुरी पे, यह हमारा हृदय लिख चुका है श्याम तेरी छटा माधुरी पे, हो श्याम तेरी छटा माधुरी पे, हो श्याम तेरी छटा माधुरी।
मतलब गायकों को अभी कई अंतराल में विसला ज्ञान राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्व तो भयात ऋषभ के भयात बच्चों को प्रसाद कुछ मिल गया है ना, ऐसा तो नहीं मैं सताने चालू कर रहा हूँ। वृषमयात्मजात विसजलात्ययात व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युतानलात वृषमयात्मजात विश्व तो भयात ऋषभ के वयम राक्षसाम। एवं परंपरया सर्वसाधारण कया चयम सदा रक्षिता एवं तरी विश्वृक्ष संवर्ध्य स्वयं क्षेत्र असंप्रतम नीति कथन न स्मर्यता कही प्रत्यय है विष जला तैयार ऋषभ बोलिए हे सर्वश्रेष्ठ विष जला तैयार विष जल के पीने से मृत्यु हो गई थी उससे बल्लों और गोपों की रक्षा की आपने व्याल राक्षसात व्याल अघासुर सवेव शरीर ग्रासित्व राक्षस प्रश्न व्याल कालियादय राक्षसा इतना बका भाग्य संचूरश्च एवं जातकत्व पुनर्द्वंद वर्ष मारुताद इंद्र कृतात वर्ष मिश्रात मारुतात वर्षन दुर्मदेन्द्र कृत संवर्तक मारुतश्च तदनीतन अथवा पुनर्वर्तश्च जातक पुनर्दंडित तस्मा दिव्यकानलात इंद्रकृतात अशनिपातात च अथवा इंद्रकृत दर्शन कालीन एवं वैद्युतम विद्युत समूह अनलश्च स्थान द्वयगत दाव जातव्यकत्व पुनर्द्वंदित्यम दृश्मयात्मजात दृशात वत्सासुरात मयात्मजात व्योमासुरात च अथवा दृशात्मजात वत्सात मयात्मजात व्योमासुरात च अथवा दृशात अरिष्टात मयात्मजात व्योमासुरात च विश्वतो भयात अन्यस्मात् अपि सर्वतो भयात तद इतरात सकतादित भयात मुहु बारं बारं ते त्वया वयं रक्षिता किम् इदानीम् इत्यक्षसे इति भवति तब गोपियाँ आगे कहती हैं यह प्रियतम अपने परंपरा से ही सब समय सभी प्रकार के दुख से हमारी रक्षा किया ऐसी नीति है कि विश्ववृक्षों की संवर्ध्य इस क्षेत्र में शाम प्रथम यदि कोई व्यक्ति विष का पौधा भी अपने हाथ पर लगाया है तो उस व्यक्ति को कहेगा अपने हाथ से कभी उस वृक्ष को नहीं सुन जब अपने हाथ से वृक्ष लगाया है भले विष का वृक्ष हो परंतु लगाने वाले के हाथ से काटा जाना यह उचित नहीं है। हे प्रियतम आपने हम लोगों की बहुत रक्षा की बारंबार रक्षा की हमारी रक्षा ने कभी अपने अलग से नहीं किया जब हर एक बार अनेक विपत्तियों से आपने हमारी रक्षा किया तो इस समय आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं हम आपके जुलाने से जीवित हैं ब्रजवासियों से अपना अभेद मान करके सारी बातें कह रहे हैं किस प्रकार विपत्तियों से कृष्ण ने इनकी रक्षा की कृष्ण के इन उपकारों का स्मरण कर रहे हैं जिसे पहले कहा गया तन्म निष्कास्तदास्त किसी भी वाक्य में भले वो निंदा जैसे दिखाई दे रहा है भाष केवल हो रहा है लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण की प्रशंसा ही है सब श्लोकों में इनका गुणगान है श्री कृष्ण किस तरह से ब्रजवासियों की रक्षा करते रहे वो भी मुँह ही बारम्बार का निरूपण करते हैं यही शब्द महत्वपूर्ण है बारम्बार श्री कृष्ण ने रक्षा की इस संसार में देखा जाता है कि यदि किसी अपने स्वजन पर लगातार विपत्ति आती रहे दुख आता रहे तो उसके दूसरे स्वजन उग जाते हैं, कहते हैं हम कितना रक्षण करेंगे। कोई बार बार महारोग से ग्रस्त होकर के दुखी रहे तो आदमी कितना दिन हॉस्पिटल ले जाएगा। बड़े बड़े पैसे वाले भी थक जाते हैं और बल्कि मनाने लगते हैं कि राम जी उनकी सीन लेते अच्छे हैं, बोले ऐसा कहने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण इतने स्नेहवान हैं, कभी भी उपेक्षा नहीं थी। विपत्तियाँ आती ही रही ब्रज में, अनेकों बार आती रही, लेकिन फिर भी निरालस होकर के रक्षा करते हैं। कभी छोड़ नहीं दी, उपेक्षा नहीं थी। कुछ विपत्ति गिना रही हैं और उसके उपलक्षण से अन्य भयों का, अन्य दुखों का भी समझ लेने के लिए विष जलाप के याद भगवान को संबोधन सबसे पहले कर रहे हैं। ऋषभ है, ये ऋषभ है, ऋषभ है तार पर सर्वश्रेष्ठ, तारुण्य आदि गुण में, सौंदर्य आदि गुण में और कृपा आदि गुण में आप सर्वश्रेष्ठ। वास्तविक प्रेम तो कृष्ण गण कहते हैं, कैसे स्नेह किया जाते हैं अपने भक्त को, अपने आश्रित को, वही जानते हैं और वही उसमें समर्थ हैं। उनको ऋषभ कहा गया, ऋषभ का अर्थ श्रेष्ठ, इससे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ, सर्व प्रकारों में श्रेष्ठ, सभी विषय में कृष्ण सबसे श्रेष्ठ, सारे सद्गुण में है। और ऋषभ का एक अर्थ है स्वामी, आप ब्रजेश्वर हैं, हम ब्रजवासिनी स्त्रियों हैं, आप हमारे स्वाभाविक स्वामी हैं, ब्रज के राजा हैं। ऋषभ का एक और किया है, हे ब्रजेश्वर, हे सर्वश्रेष्ठ, विष जला के याद अपने हमारी रक्षा के, विष जल के अपव्यय से, विनाश से विष जला के याद, विष जलम आलिय हृद जलम तेना तेना तेना की तेना अप्ययात गवाम गोपानाम च मरणात। यह वर्णन है 15वें अध्याय में विषम स्कंध के अंत में। गर्मी के महीने में भगवान श्री कृष्ण गौओं और गोपों के साथ गए जमुना जी के तट पर। गौओं को बहुत प्यास लगी थी और गोप तथा और अन्य बड़े बड़े गोप भी उसे प्यासे थे, बहुत प्यास लगी थी। इतनी देर की प्यास लगी थी अभी गर्मी का महीना, विवेक नहीं रहा कि हम लोग कालिय हृद का जल पी रहे हैं। कालिय दह का जो जल था वो पूरा विष हो गया था। भक्तों ने पढ़ा होगा जरूर है कई बार, जिसमें काली हृदय एक योजन विस्तार का था, 8 माइल विस्तार का था, 4 कोस में फैला हुआ है, बहुत जल था। काली के 101 फणों से विष निकलते थे और अन्य भी जिस घर सर्प में रह रहे थे उनके विष की आग से काली दह का जल पूरा उबल रहा था। ऊपर उठ रहा था, उसकी काली काली तरंग ऊपर उठ रही थी, वो उबल रहा था। इतना विषैला हो गया था, इतना विषैला हो गया था कि ऊपर उड़ने वाले पक्षी उसके आँख से झुलस करके गिर जाते थे। ऊपर उड़ने बहुत ऊंचा उड़ने वाले, जल के ऊपर ही नहीं, जल से बहुत दूर तक ऊपर उड़ने वाले पक्षी उसके आँख से झुलस करके पानी में गिर जाते, मर जाते। और आसपास के तट पर जो वृक्ष थे वो जमुना के उस दूषित जल के, जल का स्पर्श करके चलने वाली हवा के लगने से वो सब मर गए थे, दूषित गए थे। इतना जब उसका बाहरी प्रभाव हो सकता है उस जल का, तो इस जल के पीने पर क्या होगा। हवा लगने से, वाष्प लगने से जब पक्षी गिर जाते थे और वृक्ष सूख जाते थे। इस जल को भगवान के सखागण गोप और गौएं पी लिए। श्री कृष्ण देख रहे थे सामने, सब जल पीने के लिए ही जा रहे थे। देखते हुए भी श्री कृष्ण मेरे सामने, क्योंकि श्री कृष्ण के मन में यह था कि अगर पी भी लेंगे तो मैं उनको भूल पीएंगे। भगवान लीला करना चाहते, ये चाहते तो सर्वशक्तिमान हमें कहीं रोक सकते थे, कोई ना रोक जाए, गौओं को रोक लेते, बेटों को रोक लेते, रोकते नहीं। ये गए जाते ही पीने लगे और पी और मुंह से जो ही स्पर्श किए जल का, थोड़ा सा तो विष था, विष जल इसमें कह गए, बस छटपटा करके गिर पड़ने लगे। जो ही पिए तो ही थोड़ा सा छटपटा, तुरंत ही इतना घातक विष था, इतना उलगण था कि छटपटाने का भी समय ज्यादा नहीं है, थोड़े नहीं गिरे और जैसे बिना प्राण के होकर के जमने लगे। भगवान देखे अपने सखाओं को इस तरह मरा हुआ और गौओं को, तो भगवान के मन में एकाएक शोक हुआ, हाँ हाँ मेरा सारा धन चला गया है, मेरे सखा चले गए। तो ये उस समय फिर सनातन के स्वयं काव्य टीका लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गौओं को पकड़ करके रोने लगे और अपने सखाओं को, जितने सखा थे, जितनी गौएं थी, क्षण भर में भगवान इतने हो गए, सबका लिंगन किए, सबके नाम रख रख करके लगे रोने। जब भगवान गोए तो उनके आंखों से अश्रु बिंदु गिरे, जो ही आंसू के बिंद एक बिंद भी गिरे शरीर सत्य ही एक जी गए थे। भगवान को आंसू का अमृत थी, स्नेह के आंसू, स्नेह के आंसू लगते हैं, सब जी गए। और श्री कृष्ण कृपा दृष्टि से, स्नेह दृष्टि से सब पर देखा, जिस जल पीने के बाद मृत हो गया तो फिर भी वो सब जी गए। इसी की याद जो किया कह रहे हैं, जिस जल आपके याद, जिस जल के पीने से जो मृत्यु हो गई थी, मरण हो गया था, उस मरण से अपने आत्मसात करके कह रहे हैं, गौओं को गोपों को अपने से अभेद करके, यदि गौएं नहीं रही होती, गोप भी नहीं रहे होते। और दूसरी बात ये भी है कि श्री कृष्ण इन सखाओं के विरह में वे नहीं रहे होते, ऐसी संभावना की जाती है कि श्री कृष्ण भी नहीं रहे होते, क्योंकि श्री कृष्ण तो करोड़ों कोशिश करे मरने के लिए मर ही नहीं सकते, कोई उपाय ही नहीं है मारने का, और आत्मा को तो मारा ही नहीं जा सकता, परमात्मा को तो कोई कैसे मारे। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि जिसको कोई अस्त्र से काटे, अग्नि में जलावे, हवा में सुखावे, पानी में डुबावे, ये मरने वाला है ही नहीं, जीव नहीं मर सकता है आत्मा, तो फिर परमात्मा कैसे मर सकता, तो सीख तक केवल जीव तक है। लेकिन फिर भी लीला विशेष के लिए, लीला के आस्वादन के लिए अगर कहा जाए तो गोपों और गौओं के विरह में भगवान नहीं रहे होते, गोपियाँ निश्चित ही मरी होती सब तरह से, कृष्ण के बिना तो उनके जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस तरह गोपियाँ कह रहे कि हे प्रियतर, जमुना जी के इस महाविशाले जल से मृत्यु हो गई तो उसने उससे उस दुख से आपने हमारी रक्षा की, विष जला के याद, इन सहज ब्रजवासियों के साथ आत्मीयता का भाव है, क्योंकि कृष्ण से संबंधित हैं सभी गौओं को है गोप, इसीलिए जितनी ममता कृष्ण में है उतनी ही ममता गौओं में और गोपों में है, कृष्ण के नाते से, इसलिए उनकी रक्षा से आत्मरक्षा में प्रवेशित कर रही है, हमारी अपने रक्षा की। विष जला के याद लाल राक्षसाद, व्याल और राक्षस से रक्षा किया, व्याल से यहाँ तात्पर्य है
आभासी और वह शरीर को ग्रस्ता था, जो शरीर को खाए उसके बाद सुस्त होता है, वही राक्षस था। एक तो अर्थ ये है, लेकिन श्रीपाल सुंदर स्वामी जी अर्थ कहते हैं व्याल, व्याल से भाषुर अर्थ तो करते हैं और राक्षस ये अर्थ करते हैं दूसरे शंख चूर। देखिए यक्ष था लेकिन उसको भी राक्षस कहा गया है, शंख चूर और जमासुर राक्षस। दो को जाति के लिए तो एक वचन में प्रयोग कर रहे हैं, जात एक तत्व और फिर पुनर्गंधायक दो दो के एक करके विभक्ति में प्रवेश किया गया है। प्रश्न में दो दो उनका आय के करके दृश्यमयात निजात ब्याला काली आदय, ब्याल का अर्थ काली आदि और राक्षस का अर्थ पीतना बकासुर अभासुर आदि और शंख चूड़स च सम जाते वो सत्तम देंगे। श्री कृष्ण ने कई बार सर्प से रक्षा की है ब्रज में, ब्रजवासियों की। एक बार अघासुर से रक्षा की, बच्चे उस समय श्री कृष्ण के साथ वत्स चारण कर रहे थे, गौओं के बच्चों को चरा रहे थे। खेलते हुए बृंदावन प्रेस कर खेल रहे थे, कुछ बहुत अनेक प्रकार का विहार कर रहे थे। अघासुर इसी पथ में अपने जबड़े को फैला करके सो गए, ऊपर बादल से कईपरी एक सट रहा था, नीचे धरती से उनकी जीभ जो थी उनकी लाल सड़क जैसा दिखाई दे रही, और जो कई जीवों को खाया था पहले से सड़ा हुआ नाम दुर्गंध आ रही थी, सांस निकल रहे। बच्चे क्या कहते हैं भगवान कृष्ण को दिखा करके कहते हैं, कृष्ण कहते हर ये देखो कितने ये वृंदावन की शोभा है, ये कोई विशेष पर्वत यहाँ देखा, अभी हम लोग यहाँ कभी नहीं खेले थे, अभी देखने में बिल्कुल अजगर जैसा लग रहा है, लग रहा है कि नहीं बच्चे का बात बिल्कुल अजगर जैसा लग रहा है, लेकिन अजगर है नहीं, यह प्राकृतिक शोभा है पर अजगर के आकार जैसी सचमुच का अजगर था जो इन बच्चों को और बच्चों को कृष्ण को सबको ग्रसने चाहते। बच्चे खेल रहे थे चले जा रहे थे, सामने देख रहे हैं कि अजगर जैसा दिखाई दे रहा है परंतु अजगर नहीं है, यह वृंदावन की कोई शोभा विशेष कोई शोभा है। वो कहते देखो ये जो लाल लाल बादल है ऊपर, ये सर्प के ऊपरी जबड़े की तरह लग रहा है कि नहीं, तो कहते ये तो बना ऐसा लग रहा है नीचे का ये जो लाल लाल पत्र है रास्ता है क्या है जानते हो, ये गेरी धातु का बनाया हुआ रोड है, ये सर्प के जीभ जैसा लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल मुझे जंगल में आग लगी है कहीं जीव जंतु फेंस करके मर रहे हैं बांधे जा रहे हैं, तो ये अजगर के पेट से निकलने वाली आँच की तरह लग रही है कि नहीं, दुर्गंध की तरह, तो अजगर के पेट की दुर्गंध है जहाँ वो कई चीज खाया है, जो मांसाहारी हैं उनसे बहुत दुर्गंध निकलती है। हम लोगों ने देखा है व्यक्तिगत रूप मांस खाने वाले शराब पीने वालों के शरीर से बहुत बदबू आती है और रोग तो आते ही हैं बाद में, बहुत दुर्गंध हो जाती है। तो बच्चे कह रहे हैं कि देखो ये जंगल में आग लगी है और कुछ जीव फंस गए झुलस गए हैं, इनके जलने से जो ग्रंथ और जो दुर्गंध आती है वो तो ठीक ऐसा लग रहा है जैसे कि
अजगर के पेट में मांस सड़ने पर पचने पर जैसी गंध आती है वैसे लग रहे हैं। हाँ ऐसे लग रहा है। और जंगल में जब आग लगती है तो गर्म गर्म हवा आती है तो ये अजगर के सांस जैसी लग रही है कि नहीं? ये सब ऐसे कहते हाँ है, अजगर के सांस जैसी लग रही है। किसी कथा ने कहा कहीं सचमुच के अजगर न हो, सावधान होना चाहिए। तो कुछ बच्चे कहते अजगर, उनको विश्वास अजगर नहीं है। अगर अजगर होगा भी ना तो बकारी यही पर है, बक का शत्रु अभी अभी चिड़िया का खड़ा है ना, बकासुर को ये साथ में है। अगर अजगर होगा ना तो वह अभी बकवत बिना छेती वो बकासुर की तरह अभी मरेगा। और ताली फेंकते हुए जय जयकार करते हुए फूलते हुए चले गए अजगर के पेट में। और भगवान वहाँ भी हफ्ता बैठा जी उनको देखते तो देखते रह गए, सब प्रविष्ट हो गए। वो अघासुर अपने जबड़े को खोला ही रह गया क्योंकि देख रहा था कि जब बकासुर को मारने वाला पुतना को मारने वाला सांवला लड़का जब आएगा तब मैं चक्की दाबूंगा होता है पीस दूंगा सबका पानी। ये सोचे अभी अभी फाड़े हुए थे और बच्चे सब चले गए पेट में, किसी को दबाया नहीं, चूर्ण नहीं किया। और एक बार दबाया था तो उसका तो दांत भारी भारी पत्थर के समान बड़ा बड़ा पत्थर पीस दिया होता उस प्रेशर। लेकिन दबाया नहीं, प्रेस करे भगवान सोचने लगे भाई यहाँ भी दिखने मुद्रा में हो गए भगवान। लेकिन सर्वज्ञ और सर्व समर्थ ईश्वर फिर कुछ उसके पेट में प्रवेश किए, पेट में नहीं प्रवेश करते हैं मुख में प्रवेश किए। जो लोग श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं भगवान मानते हैं उनका कितना अच्छा ज्ञान है, कितना शुद्ध चेतना उनकी। जो लोग श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते हैं अंधे को ये सब करना चाहिए नहीं, क्या लिखा हुआ क्या कहा जा रहा है, कोई घबराहट नहीं हुई। अजगर के पेट में जा रहे हैं, बचाने के लिए जा रहे हैं अपने बच्चों को और अपने सखाओं को मित्रों को अजगर के मुख से पेट से निकालने के लिए जा रहे हैं। जय भगवान प्रवेश किए उसके ठीक कंठ में जहाँ सांस पाना जनक है भगवान श्री कृष्ण अपने को अकस्मात बढ़ा दिए, अकस्मात बढ़ा इतना बढ़ाए कि पूरा गला में उनका शरीर फंस गया बिल्कुल एयर टाइट। वो सांस न ले सकता था न बाहर कर सकता था, वो सांस लेने के लिए तड़पने लगा। इतना छोटा सा लड़का इतना बड़ा कैसे है, पूरा एयर टाइट चिपक गए शरीर को सब जगह, कहीं से भी सांस नहीं ली जा सकती। वो छटपटाने लगा छटपटाने लगा उसकी आँखें उलट गई गया तब तक तो उसका पेट फट गया, पेट फटा और इसी से सारे बच्चे और बछड़े बिल्कुल सुरक्षित निकले करते हैं, कोई खरोच नहीं लगा कहीं कुछ नहीं। और वैसे कुछ आचार्यों का कहना है कि मर गए थे उसके पेट में, इतनी दुर्गंध थी और सड़ी हुई हवा में और यहाँ कैसे जी सकते, मर गए थे। लेकिन भगवान ने उनको जीवित किया, जीवित करके निकाल दिया। ये सब तो श्री कृष्ण के प्रसाद हैं, समझ लीजिए इस तरह श्री कृष्ण अभासुर से रखते थे। दयाल दूसरा दयाल का अर्थ कृपा सनातन गोस्वामी करते हैं, दयाल का अर्थ काली विषैले जल संरक्षा अलग चीज है और कालिये को रमणक द्वीप में भेज देना वृंदावन से बाहर करना एक दूसरी रक्षा है। अगर कालिये रहा होता तो हर एक संभावना तो मृत्यु की संभावना सब समय थी। भगवान ने कालिये को निकाल दिया गंगा जी के जल से और रमणक द्वीप में भेज दिया, इसके लिए जाल शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। जाल का अर्थ है सुदर्शन नाम का अजगर, अंबिका दल ने नंद बाबा को पकड़ा था। लेकिन यहाँ प्रश्न होता है कि जो लीलाएं अभी नहीं हुई हैं, ये लीलाएं कैसे श्री गोपीजन बोल रही हैं? सनातन गोस्वामी का जी कहते हैं कि भांगुरी ऋषि के मुख से और कर्णवासी देवी के मुख से गोपियाँ सुनती थी हमेशा श्री कृष्ण आगे ये लीला करेंगे, आगे इसका वध करेंगे, जो ये वध करेंगे, ये करेंगे। इनमें इतना अभिनिवेश है कि श्री कृष्ण ऐसी लीला करेंगे तो अपने प्रियतम की लीलाएं हैं, चाहे पहले हुई हैं, चाहे इस समय हुई हैं, भविष्य की ही इतना ही चाय से स्मरण होता है। इसका भी वे बीते हुए जैसा स्मरण कर रहे हैं। सुदर्शन नाम का अजगर था, वास्तव में विद्याधर था लेकिन अजगर बन गया था। सुदर्शन नाम का विद्याधर था, अजगर बनकर नंद बाबा को पकड़ेगा, ये बाद की लीला। और अरिष्टासुर की भी, अरिष्टासुर वध की लीला यही बाद में होने वाली है। गोपियों के स्वप्न में मनोरथ में श्री कृष्ण इस तरह स्फुरित होने लगते थे। फिर सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वे ये कहते हैं कि आपने बारंबार उनसे रक्षा किया, तो बारंबार किस से? तालियों से, इसके बाद इससे, इसके बाद इससे, इसके बाद इससे नहीं, एक ही से अनेक बार रक्षा किया। ये कहते हैं कि कभी कभी स्वप्न में गोपियाँ देखती थी कि आज प्रियतम इस विपत्ति से हमारी रक्षा किए, आज इसका वध किए, इससे रक्षा किए, इससे रक्षा किए, ऐसे हमको बचाया। तो जो पहले लीला हो चुकी थी या बाद में होने वाली है, इसको भी ये सपना में देखती थी, इसके लिए भी मुहू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सपना भी कोई व्यक्ति यही देखता है जो वो जागृत में करता रहता है। गोपियों का चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा हुआ था, इसलिए सपना भी प्रियतम श्याम सुंदर के विषय में ही देखती थी। यहाँ बांसुरी बजा रहा है तो यहाँ काली सुरक्षा कर रहे हैं, सारा समाज जन्ना जी के तट पर खड़ा है। श्री कृष्ण वहाँ पर बचाए थे ब्रजवासियों को, सर्प के बंधन से बाहर हो गए तो सारे ब्रजवासी बच गए, नहीं तो सब जमुना के जल में प्रवेश कर रहे थे। नंद बाबा प्रवेश कर रहे थे जिनको श्री बलराम जी ने रोका, और माँ यशोदा प्रवेश कर रही थी तो उनकी कुछ सहेलियों ने रोका, लेकिन अंततः सब कंठित थे अब श्री कृष्ण के पास जाने के लिए। तब तक श्री कृष्ण भुजबन सर्प के बंधन से छूट करके पहुंचे। तो इस प्रकार श्री कृष्ण बारम्बार रक्षा किए थे, बारम्बार ये कहीं भी विपत्ति से सपना आदि में देखती थी तो इसको भी बिल्कुल जागृत जैसा देखती थी और याद करती थी। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप बारम्बार रक्षा की, अथवा बारम्बार का रक्षा के रखने का यह अर्थ है कि एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, कंटिन्यूअस कोई न कोई देख, कोई न कोई भय लगा रहता। और फिर भी श्री कृष्ण कभी उदासीन नहीं हुए, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप कितना रक्षा करें, हमेशा तो कोई न कोई विपत्ति आती रहेगी। आज काली है तो कल इंद्र इसका किया, इंद्र वर्षा किए तो उसे रक्षा की, तीन बार सर्प से रक्षा की, भासुर काली और इस अजगर से अंबिका जन में तीन बार सर्प से। तीन बार तो प्रकट लीला लिखी गई है, पता नहीं कितने बार सर्प से रक्षा की होती। और राक्षस से रक्षा की, एक श्लोक में एक वर्णन में पिता ने कहते हैं कि राक्षस का यह अर्थ है शंख चूर्ण, क्योंकि जक्ष थे, जक्ष को भी कभी कभी राक्षस कह दिया गया है। जक्ष में राक्षस में कोई भेद नहीं है। ब्रह्मा जी जो जक्षों को पैदा किए राक्षसों को, जक्षों ने कहा खा जाए किसको, ब्रह्मा को, अपनी सृष्टिकर्ता को। ये भगवत तृतीय स्कंध में कहता है, डॉक्टर को सृष्टि किया और राक्षसों को ही सृष्टि किया। दक्षों ने कहा आपस में, दौड़े ब्रह्मा जी को खाने के लिए, जैसे तैसे काट करके नोट करके इनको खा जाने के लिए, चारों मूड़ी तोड़ करके चार आदमी खा जाते हैं, ऐसे जैसे तैसे खाने के लिए दौड़े। उनको उनको भूख लगी थी, उन्होंने सृष्टि किया तो इनको भोजन का प्रबंध करना चाहिए था ना, भूख लगी थी तो अपने बाप को ही खाने चले। वो कहे, जब बोल रहे थे खा जाओ जक्ष जक्ष मैंने भक्षण कर जाओ, खा जाओ खा जाओ, ये राक्षस थे, कहते कहे माँ रक्षा छोड़ो मत छोड़ो मत, दोनों का एक ही अर्थ हुआ, खा जाओ, और दूसरा दल कह रहा था मत छोड़ो मतलब खा जाओ, यही अर्थ होते हैं माँ रक्षा। तो श्री ब्रह्मा जी ने बाद में एक का नाम जक्ष दिया और एक का नाम राक्षस दिया। तो राक्षस कभी कभी जक्ष कहा जाता है, जक्ष को भी राक्षस कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी पहले बच्चे भगवान के शरण से, जब खाने दौड़े तो भगवान के शरण में गए, बच गए, तब उन्होंने नामकरण किया। जक्ष और राक्षस, इस प्रकार यहाँ राक्षस शब्द उपयुक्त हुआ है, संचूर के लिए हुआ है। अथवा अघासुर कीतना बकासु, ये तीनों भाई बहन थे, दो भाई थे, सिस्टर कीतना जी थी, पूरा वंश के संसद में दबदबा था कितना प्रभाव, ऋषि को कंस ने निदुक्त किया बच्चों की हत्या के लिए। आज कल भी एक विभाग चल रहा है गर्भपात के बीच में, जैसे बच्चों की हत्या ही चल रही है, इससे ज्यादा लाइटेड वे में है, लाइट वे में है, हत्या यही है राक्षस प्रकार। इस प्रकार भगवान ने रक्षा किया अघासुर से, बकासुर से और कीतना से, ज्ञाल राक्षसा वर्ष नारिता वर्षा से रक्षा की और नारी से रक्षा। वर्ष से तात्पर्य है इंद्र के द्वारा की गई ओले की वर्षा, तो साधारण जल नहीं बरस रहा था, बहुत बड़ी वर्षा हो रही थी, पत्थर की वर्षा, और सात दिन सात रात वर्षा होती है। श्री गोपी जनों को सब कुछ याद है किस तरह प्रियतम रक्षा की है, भारी वर्षा हो रही थी, आंधी मारी ऐसा चल रहा था कि पेड़ों को खड़ने वाली आंधी, बड़े बड़े वृक्षों की धसाई करने वाली संवर्तक वायु चल रहा था, जोर की आंधी चल रही थी, भी वर्षा के साथ, और इस आंधी के खतेड़ों से पत्थर इधर उधर धक्का मार रहे थे। यहाँ तो कभी कभी गिरिराज जी के भीतर भी इस ओले चले जाते, धार पानी और ओले बरसाए जा रहे थे। वैद्य कामला उसमें वैद्युत अमल, बिजली की आग, अथवा वैद्युत का अर्थ वज्रपात, सात दिन सात रात इस तरह से मूसलधार पानी, ओले की वर्षा, जोर की आंधी, वज्रपात होते रहे सात दिन सात रात। इंद्र भी ऐसे पागल हो गए थे कि अरे एक दो घंटा बरसाते फिर बंद कर देते, लेकिन ये पड़े हुए थे कि ब्रज का नाश कर देंगे, नाश कर देंगे, अभिमान बढ़ गया था, निकेश भी निकल लगता है
श्री कृष्ण को भगवान नमस्त कर दिया। वास्तविक सत्य यह है कि भगवान इंद्र के हृदय में श्री कृष्ण स्वयं ही ये प्रेरणा कर रहे हैं, लोग उत्पन्न किए क्योंकि वे गिरिराज धरण की लीला करना चाहते हैं। इंद्र ऐसे नहीं है कि भगवान को इतना स्नान करें, वास्तव में किसी के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, इनके लिए भगवान अवतार लेते हैं, आश्रयों का ग्रहण करते हैं। बस देवता कैसे इतना विरुद्ध हो सकते हैं? भगवान को जो भी करना चाहते हैं वो कर देता है। अर्जुन इतने शुद्ध हैं, विशुद्ध सत्व में इनका शरीर है, सब कुछ है, फिर किसी के नित्य पार्षद है, लेकिन स्वजनों के मोह में होकर के युद्ध से निकल गए। भगवान के नित्य पार्षद है, उनमें अज्ञान कैसे आ सकता है? लेकिन जब कृष्ण स्वयं अज्ञान दिए जीवन आ गया, क्योंकि कृष्ण भगवद गीता का उपदेश करना चाहते थे, इसी तरह से श्री भगवान ने लीला करना चाहते थे। अपने भक्तों के प्रति भगवान का कितना स्नेह होता है, उस स्नेह का प्रदर्शन चाहते थे, लोग समझे कि भक्त से इतने प्रेम करते हैं। इसी भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, गोवर्धन जी को उठा करके छत्ता की तरह धारण किया और रक्षा किया। वर्ष मारिताज इस शब्द द्वारा लीलाओं की याद कर रहे हैं, गोपियों जितने हमारी वर्षा से रक्षा की, सभी लोग पर्वत के नीचे आ गए थे छत्ते के अंदर। वर्ष मारिताज वैद्य कामलाप और वज्रपात से अमल से दो बार वृंदावन में आग लगी थी, दवानल लगा था, इससे अपना लक्षण था। यदि श्री कृष्ण नहीं होते तो दवानल पूरे ब्रज को भस्म कर दिया है। दोनों बार आग को अद्भुत रीति से भगवान ने बुझाया, दोनों बार मुंह में पी लिए, के लिए विशाल क्षेत्र में लगी हुई आग को मुख्य के लिए। एक बार गोपियों ने प्रत्यक्ष देखा था भगवान को आग पीते हुए कालिय दमन के दूसरे दिन, उसी रात दूसरी लीला को गोपियों ने सुना था गोप सखाओं के द्वारा, इस तरह से कृष्ण आग पी लीजा कई में दो बार आग लगी थी, उसके हेतु प्रयत्न अपने हमारी रक्षा किया। वृष मयात्म जात वृष से रक्षा किया और मय के आत्मज से, देवनासुर मय दानव का पुत्र था। मय बहुत प्रसिद्ध दानव है, इसी चलते पुराणों में इतिहास में सब उसका पुत्र था, उसका नाम था व्योम। वह जो सखाओं को भगवान के सखाओं को ले जा करके एक गुफा में बंद करता था, पूरा सबको मार डालेगा, लेकिन भगवान उसका वध कर दिए और गुफा से निकाल ले अपनी सखाओं। मयात्मक से अपने रखा किया और वृष से, वृषकार से बच्चा से जो बछड़ा बन करके आया था, इससे अपने वृक्ष का एक अर्थ बैल और इसका असुर, और इसका असुर से अपने हमें रखते थे, क्योंकि ये लीला बाद में होने वाली है, पर इसको भी गति कर स्वाभाविक ले रहे हैं, उनके मन में स्थिरित हो रही है लीला, भविष्य में लीला होगी तो उसको भी रक्षा की लीला है, आता है बीती हुई अतीतकालीन लीला जैसा उसको व्यक्त कर रहे हैं, ये स्वाभाविक है। इस तरह से अन्यभ्य विश्वते भया, अन्य भी भय से रक्षा के, जैसे सत्तासुर को रक्षा के, धनिकासुर के बल से रक्षा की, श्री बलराम जी के द्वारा जो रक्षा हुई है उसको भी कृष्ण में ही परिवर्तित कर रहे हैं। धनिकासुर से रक्षा के, सत्तासुर से रक्षा के, जमलार्जुन से रक्षा के, दोनों वृक्ष गिरे थे उससे रक्षा के, और इतना के आवाज कितना इतना जोर से बोली थी, तब पर ऐसा लगा था कि वज्रपात उनके सिर पर हो रहे, तो इससे भी भगवान नहीं रक्षा करते थे, इसको समझ रहे हैं जो कृष्ण बचाए।
उनके केवल कितने के गरजने से चिल्लाने से है करने से लोग मर गए हैं। सब लोगों को यही अनुभव हुआ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सबको यही अनुभव हुआ कि हमारे कपार पर बिजली गिर रही है। तो गिर गए थे उसके बाद शांत वातावरण हुआ तो सभी थे। इस प्रकार हे प्रियतम आपने अनेक विपत्तियों से अनेक संकटों से हमारी रक्षा की। वो इतने दिन रक्षा किए इतना बर्फ झिलाया इस तरह से तो स्वयं ही अब मनमत के कामदेव को प्रेरित करके हमारा स्वयं बंध कर रहे हैं। जब इन विपत्तियों से रक्षा किए तो इस महासंहारक इस काम से हमारी रक्षा कीजिए। अर्थात हे प्रियतम आप हमारे मित्रों के सामने हो जाइए। आपको देखने की लालसा से हम मर रहे हैं। आप जब सब समय रक्षा किए वो सब नीति है कि विष वृक्ष भी रोप करके अपने से नहीं काटना चाहिए। तो आपके द्वारा हम जलाई गई हैं आपके द्वारा पोसी गई हैं हम आपकी हैं। आप हमें इस तरह मत मारें। हमारी मरने की बिल्कुल स्थिति है। शीघ्र ही वन से बाहर आ गई जमुना जी के कुलीन पर आ गई कृपया हरे कृष्ण।